इस मन का नहीं और उपाय, सत्पुरुषों का जीवन ध्याय। इस मन की मलिनताई दूर करने के लिए एकमात्र कोई सही साधन है तो वो है किसी भी पूर्ण गुरु के जीवन का अध्ययन करना, या जिस प्रकार उन्होंने ये मानव जीवन व्यतीत करके उस ईश्वर की प्राप्ति की, उसी मार्ग पर चलकर मैं भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता हूँ। इसीलिए सत्पुरुष के जीवन पर ध्यान देने की जरूरत है, उसको सीखने की जरूरत है। तो महाराज जी ने तो बड़ी कृपा कर दी कि जो कुछ भी इन्होंने किया और हमारे मार्गदर्शन के लिए जो कुछ भी जरूरी था वो लिखकर भी छोड़ गए, समता विलास के रूप में, समता प्रकाश ग्रंथ के रूप में। तो सत्पुरुषों का जो मार्गदर्शन है, सत्पुरुषों की हमारे लिए जो सहायता है सही मार्ग पर चलने के लिए, मानव जीवन सही रूप में व्यतीत करने के लिए, वो शास्त्र के स्वाध्याय से या उनके वचनों के स्वाध्याय से ही उसका पता लगता है। तो समता विलास में महाराज जी लिख रहे हैं, केवल सदाचार की दृढ़ता से, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों पर काबू पाने से ही अपने आप को शांति प्राप्त होती है। केवल सदाचार की दृढ़ता से, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों पर काबू पाने से ही अपने आप को शांति प्राप्त होती है। ऐसे ही दूसरों को भी पवित्र आचरण की ठंडक से सत शांति प्रतीत होने लगती है। यह ही रास्ता अमन और शांति का है। इसके विरुद्ध जितना भी जीवन विकारमय होता जाएगा उतनी ही अशांति बढ़ती जाएगी और मानुष पशुओं से भी बुरे स्वभाव वाले बनकर एक दूसरे के नाशक हो जाए। तो मेरे अंदर, मुझको पता है मन है, लेकिन मन में क्या है, मन का विज्ञान क्या है, मन का शोधन कैसे किया जा सकता है, उसका मुझको ठीक ठीक बोध नहीं है, ठीक ठीक पता नहीं। तो सत्पुरुष उसी के बारे में गाइड कर रहे हैं। साधारण मनुष्य जो सामाजिक प्राणी है या यूं कहिए सांसारिक मनुष्य है, उसके मन के अंदर प्राकृतिक रूप से, क्योंकि पूरी प्रकृति जो है, जैसा कि शास्त्र में आता है कि पांच तत्व से बनी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो हर चीज जो प्रकृति में होती है उसके कुछ गुण कुछ दोष भी होते हैं। तो मेरा शरीर भी उसी प्राकृतिक मटेरियल से बना है, जिसकी बाहर की प्रकृति है वही मेरे शरीर की प्रकृति है। तो इसीलिए इस प्रकृति में भी पांच विकार हैं, मेरी देह में भी पांच विकार हैं, जिसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहा जाता है। तो ये विकार रहते कहाँ हैं? शरीर में कहीं तो रहते होंगे। तो जिस ऑर्गन में ये रहते हैं उस ऑर्गन का नाम है मन, जो कि किसी भी ऑपरेशन से, किसी भी मेथड से दुनिया में कोई डॉक्टर उसका टेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मुझको पता है मन है। मुझको ये भी पता है मन में इच्छा उठती है, और संसार में जितने झगड़े होते हैं इच्छा पूर्ति के लिए होते हैं। मेरी जो इच्छा है वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मुझको उससे खुशी मिलती है। उसके प्रेशर में आकर, उसके मोह में आकर या उसके प्रभाव में आकर मैं दूसरे की इच्छा पर ध्यान नहीं देता। मैं चाहता हूं कि मेरी जो तकलीफ है वो दूर होनी चाहिए, दूसरे को मैं ओवरलुक कर जाता हूं या उसकी अवहेलना कर जाता हूं, उधर ध्यान नहीं देता। तो सत्पुरुष कहते हैं कि सुधार का रास्ता भी तो मन के अंदर ही है। विकार जब मन में है तो सुधार का रास्ता भी तो मन से ही होकर जाता है। इस मन से परेशान कौन होता है? मुझको पता है कि मैं परेशान होता हूं, मैं अपने ही मन के कारण परेशान होता हूं। लेकिन फिर भी संसार में कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि जो इस मन को ठीक कर दे, कोई दवाई का इसमें प्रयोग नहीं होता, किसी के संसारिक ज्ञान का इसमें कोई प्रयोग नहीं होता। तो सत्पुरुष जो है इस विज्ञान को समझते हैं, इसको जानते हैं, इसीलिए वो शास्त्र के रूप में इस विज्ञान को हमारे सामने लिखकर छोड़ जाते हैं या अपने जीवन से दिखा जाते हैं। तो महाजी कह रहे हैं कि केवल सदाचार की दृढ़ता से, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों पर काबू पाने से ही अपने आप को शांति प्राप्त होती है। शांति सबको चाहिए, बेचैनी किसी को नहीं चाहिए, लेकिन विज्ञान का मुझको नहीं मालूम कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों, आदि विकार का मतलब जैसे हम इसके अलावा ईर्ष्या द्वेष करते हैं, हालांकि वो सारी चीजें इन पांच विकार के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन उसका विश्लेषण हम ठीक प्रकार से करना नहीं आते। तो आदि का मतलब क्या हो गया यहां पर, जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में कि हम ईर्ष्या द्वेष करते नहीं करते, मेरे पास जो चीज नहीं है दूसरे के पास है, उसको देख के मैं जलता हूं, खाली जलता ही नहीं हूं नफरत भी करता हूं, उसको देख के मैं बेचैन भी होता हूं। तो ये ईर्ष्या द्वेष जिसकी जरूरत ही कोई नहीं है, ये बात कोई नीड नहीं है, लेकिन दूसरे को के सुख को देख के ही आप जलते हो। विचार करने की बात यह है, जिसका जिससे मेरे कोई संबंध ही नहीं है, तो मेरे मन में उसके प्रति जलन क्यों है, उससे मैं ईर्ष्या क्यों कर रहा हूं। इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि संसार में सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, कोई गाइड करने वाला नहीं है कि यह बीमारी है और इसका इलाज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिना बात के तेरे जीवन में जो है वो बेचैनी भोगने को मिलेगी तुझको। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि केवल सदाचार की दृढ़ता से, यानी सदाचार कोई और चीज नहीं है, केवल सदाचार की दृढ़ता से, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों पर काबू पाने से ही अपने आप को शांति प्राप्त होती है। अब बताइए, विकारों पर काबू पाने से मुझको शांति मिलती है, अर्थात मन में चैन आता है, ईर्ष्या द्वेष की जलन भी शांत होती है, लेकिन उसका रास्ता मुझे नहीं मालूम। आगे कह रहे हैं, ऐसे ही दूसरों को भी पवित्र आचरण की ठंडक से सत शांति प्रतीत होने लगती है, यही रास्ता अमन और शांति का है। इसका मतलब किसी के भी जीवन में, चाहे परिवार में हो चाहे समाज में हो, किसी के भी जीवन में यदि ये पांच विकार कम है या उसने इस पर संयम किया है, तो आपको वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से अच्छा लगेगा, शकल देकर नहीं, ये उसके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। जो मन की सफाई करता है आध्यात्मिक तरीके से, क्योंकि संसार में तो मेथड है ही नहीं कोई इसका, इसका मेथड केवल अध्यात्म है, इसीलिए उसी का एक नाम है सदाचारी जीवन। सदाचार का मतलब है सत आचरण, सत आचरण का मतलब होता है वो आचरण, वो वे ऑफ लाइफ जो आपको सत की ओर ले जाए, अर्थात प्रभु की ओर ले जाए। तो अब बताइए, आप इस सदाचार की कमाई करते हो अपने जीवन में, क्यों कमाई करते हो, क्योंकि आपको गुरु सिखाता है कि प्रभु तो अंदर है, जो प्रभु अंदर है उसकी प्राप्ति का रास्ता भी तो अंदर ही है, लेकिन मेरी सारी सामाजिक ट्रेनिंग यह है कि मन को बाहर की दौड़ लगाओ, सारे सुख बाहर बिखरे पड़ गए, जीवन की सफलता बाहर बिखरी पड़ी है, वहीं से मिलेगी जीवन की सफलता। लेकिन सदगुरु जब आता है तब आपको दूसरी चीज सिखाता है, वो कहता है बाहर तो संसार में पांच विकार की दौड़ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसीलिए जो राष्ट्र जितना ज्यादा विकसित होता है वहां के लोगों के ये पांच विकार और गहरे बढ़ जाते हैं, इसीलिए वो कोशिश करता है कि सारी दुनिया पे मेरा राज्य हो जाए। पूरा इतिहास उठा के देख लिए पूरे वर्ल्ड का, जब से लिखा गया है या जब से आप जानते हैं, हर देश हर व्यक्ति जो आगे बढ़ा है, जिसको कहना चाहिए कि भोगवाद की दृष्टि से देखिए आप, मेटेरियलिस्टिक एटीट्यूड से देखिए आप, तो क्या हुआ है उसकी, उसके अंदर पांच विकार गहरे हो गए, कि पांच विकार गहरे हुए तब वो संतुष्ट तो हो ही नहीं सकता, वो संतुष्ट एक ही बात में होता है कि मैं सबसे महान बन जाऊं, सबसे बड़ा बन जाऊं, सब मेरे अधीन काम करें। इसलिए एक शब्द की खोज हुई, चक्रवर्ती राजा। चक्रवर्ती राजा उसे कहते हैं जहां तक उसका बुद्धि जाती है वो कहता है कि मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मैंने राज्य करना है, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, पूरे विश्व में मुझसे बड़ा दूसरा कोई राजा है ही नहीं। अब बताइए, शारीरिक जीवन कितना छोटा सा है लेकिन बुद्धि का लक्ष्य क्या बन गया, चक्रवर्ती राजा बनना है। इसमें गलती कोई नहीं है, यही प्राकृतिक जीवन है और हम सब इसी अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे को देख के कंपटीशन करते हैं, समझ कोई है नहीं अपने जीवन की, अध्यात्म विद्या की हम जरूरत नहीं समझते, वास्तव में गुरु हमारा कोई है नहीं, गुरु है भी कोई पाखंडी गुरु बना लिया जो माया में आपको और फंसा देता है। तो इसीलिए यदि सही रास्ता कोई है तो पूर्ण गुरु के मार्गदर्शन को पढ़ना सीखना, यही वो रास्ता है जो हम अपना सकते हैं। तो माँ जी कितने सरल रूप में हमको हमारा विज्ञान समझा रहे हैं कि केवल सदाचार की दृढ़ता से, यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों पर काबू पाने से ही अपने आप को शांति प्राप्त होती है। अशांति बाहर नहीं है, अशांति मेरे मन में है जो अंदर है, क्योंकि मुझको पता है मेरे बच्चे के अंदर भी, मेरे परिवार में किसी व्यक्ति के अंदर भी जब मन में कोई कामना उठती है तो वो कितना बेचैन होता है। और सबको एक ही मेथड मालूम है, इसकी बेचैनी दूर करनी है तो इसकी इच्छा ये पूरी कर दो। किसी को यह होश नहीं होता, हर इच्छा इन पांच विकार में से एक है, याद रखिए। उस इच्छा का यदि एनालिसिस किया जाए, आध्यात्मिक विश्लेषण किया जाए, तो वो इच्छा कहीं ना कहीं इन पांच विकारों में से एक को बढ़ाने वाली ही होगी। इसलिए जैसे जैसे आप इच्छाएं पूरी करते हो आपका मन बिगड़ता चला जाता है, ये संभलता नहीं है। संसार में देखते हो प्रगति हो रही है हमारी, पैसा बढ़ गया, पद बढ़ गया, लेकिन आपको पता नहीं है आपके अंदर एक विकार बढ़ा है। इसीलिए मनुष्य संसारी जीवन व्यतीत करके कभी चैन में आ ही नहीं सकता, उसके अंदर कभी चैन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा आध्यात्मिक विश्लेषण, सारी आध्यात्म विद्या ये सीधा का सीधा एनालिसिस कर रही है, विश्लेषण कर रही है, जो हम एक्सेप्ट नहीं करते या इसको सीखने की कोशिश नहीं करते। तो आगे वो करें, ऐसे ही दूसरों को भी पवित्र आचरण की ठंडक से सत शांति प्रतीत होने लगती है। यदि मैंने इन पांच विकारों को कम करने की कोशिश की आध्यात्मिक तरीके से, क्योंकि संसारी तरीका तो है ही नहीं कोई इसके लिए, तो मेरे आचरण की ठंडक से सत शांति प्रतीत होने लगती है। तो मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे परिवार के ही जो लोग हैं जिनसे मेरा डायरेक्ट संपर्क है, तो इनडायरेक्टली उनके ऊपर मेरी पर्सनालिटी का इफेक्ट होने लगता है, मेरे आचरण का प्रभाव उनके मन पर स्वतः ही होने लगता है। किस रूप में, कि उनके अंदर ये एक्सेप्टेंस आने लगती है कि इसका जीवन ठीक है। ये मैं जो समाज में लोग देखता हूं उनकी तुलना में ये ठीक इंसान है, तो ये प्रभाव इनडायरेक्टली होता है आपके मन के शोधन का, आपके शुद्ध मन का दूसरों के मन पर, जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है। आगे कहते हैं, यही रास्ता अमन और शांति का है, इसके विरुद्ध जितना भी जीवन विकारमय होता जाएगा उतनी ही अशांति बढ़ती जाएगी और मानुष पशुओं से भी बुरे स्वभाव वाले बनकर एक दूसरे के नाशक हो जाएंगे। यह ही देखिए आप वास्तव में संसार की प्रगति हो रही है, कि जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे जैसे देखिए पैसा बढ़ रहा है देशों के पास, कितना विकास हो चुका देश का, कितना विकास हो चुका दुनिया का, एक एक देश कहां पहुंच गया, धरती पे चैन नहीं है तो चंद्रमा पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ है, सबको पता है कि इतने शस्त्र इकट्ठे हो गए हैं पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया चार बार भी खत्म कर दो तब भी शस्त्र बच जाएंगे आपके पास। कितनी ईर्ष्या द्वेष, कितनी प्लानिंग, कितनी जासूसी, ये क्या हो रहा है, किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। जिसके अंदर भी स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है, वो दूसरों को दबाने की कोशिश करता है, यही तो हम देखते हैं दुनिया में। तो इसीलिए जो बात कह रहे हैं कि पशु से भी बुरी हालत मनुष्य की होती हो जाती है, अर्थात इसकी बुद्धि अंधी ही हो जाती है इस बाहरी वासना के चक्कर में, बाहरी विकास के चक्कर में। तो आगे सतपुरुष क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर कोई सही उन्नति करना चाहता है। अब देखिए, हम किस उन्नति को जानते हैं और सतपुरुष सदगुरु किस उन्नति की बात कर रहा है। अगर कोई सही उन्नति करना चाहता है तो पहले अपने आप को सतपरायण बना करके अपने आचरण को अधिक से अधिक शुद्ध करने का यत्न करे। अब शब्द तो हमने बहुत बार सुना होगा सतपरायण बना करके, सतपरायणता होती क्या है? सतपरायणता का सीधा सा मतलब होता है ईश्वर के परायण हो जाना। ईश्वर के परायण होने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लिया आपको दुनिया में डॉक्टर अच्छा लगता है, या इंजीनियर अच्छा लगता है, या कोई एडमिनिस्ट्रेटर है वो अच्छा लगता है, और आपकी बुद्धि कहती है इसका सफल जीवन है, तो आप क्या करते हो? एक गोल बनाते हो, एक लक्ष्य बनाते हो कि मैंने MBBS करना है, डॉक्टर बनना है। अभी आप हाई स्कूल में हो, डॉक्टर की बुद्धि नहीं है आपके पास, लेकिन देखकर आपने गोल बना लिया, देखकर यह सीख लिया कि यह जीवन अच्छा है, तो आप लक्ष्य पहले बना लेते हो फिर उसकी तैयारी करते हो, तो क्या हुआ? यह है संसार परायणता। संसार में एक चीज मैंने देख ली, यह अच्छी है, इसमें जीवन की सफलता है, तो मैं उसके परायण, अर्थात वो मेरा लक्ष्य बन गया, लक्ष्य को ध्यान में रखकर अब मैं जीवन की तैयारी कर रहा हूं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो ये वचन वही बात सिखा रहा है, अगर कोई सही उन्नति करना चाहता है तो पहले अपने आप को सतपरायण बना करके, अर्थात अपना लक्ष्य निर्धारित करके। अब कैसे निर्धारित करोगे? कोई साथ में सामने जीवन तो चाहिए, वहां तो डॉक्टर दिखाई पड़ गया उसको, तो वो कौन होता है? वो सतपुरुष होता है, जिसको हम सतगुरु कहते हैं, जिसको हम अवतार कहते हैं। किसी से पूछो तुमको कृष्ण बना देते हैं, हां बन जाऊंगा कृष्ण, क्यों? क्योंकि कृष्ण के प्रति श्रद्धा है कि बड़े पावरफुल थे वो, जो चाहे कर सकते थे वो, और दुनिया उनको याद करती है, तो मैं भी चाहता हूं दुनिया मुझे याद करे, मैं भी सफल जीवन व्यतीत करूं। तो ये तो एक नकल करके लक्ष्य बना लिया आपने, इसमें इसके पीछे अकल कोई भी नहीं। कृष्ण बनने के लिए क्या करना पड़ेगा वो पता ही नहीं है आपको। कृष्ण बनना चाहता हूं मैं, राम बनना चाहता हूं, क्योंकि देखा इनका बड़ा नाम होता है, बड़ी पावर्स होती है, बस कंफ्यूज हो गया। तो सतपुरुष कह रहे हैं कि अगर कोई सही उन्नति करना चाहता है, उन्नति की बात नहीं कर रहे हैं वो, अगर कोई सही उन्नति करना चाहता है तो पहले अपने आप को सतपरायण बना करके अपने आचरण को अधिक से अधिक शुद्ध करने का यत्न करे। तो सतपरायण का मतलब हो गया कि ईश्वर उसके जीवन का लक्ष्य हो, और ईश्वर दर्शन के लिए, ईश्वर के अनुभव के लिए वो जीना चाहे, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि गुरु ने उस ईश्वर की प्राप्ति की, मानव जन्म लेकर यही तो उसके जन्म का फायदा है, यही तो उसके जीवन का फायदा है हमारे लिए, कि उसने उस लक्ष्य को प्राप्त करके हमको दिखाया कि मनुष्य जन्म लेकर इसको प्राप्त किया जा सकता है, और खाली प्राप्त नहीं किया सकता। जैसे कृष्ण का नाम है ऐसे महाराज जी का भी नाम, वहां से वाणी प्रकट हो रही है, शास्त्रों की रचना हो रही है, जो भी उनको जान लेता है उनके जीवन के बारे में जो है वो पढ़ना चाहता है, उनके शास्त्र का अध्ययन करना चाहता है। इसका मतलब उसका ऐसा जीवन है धरती पर जो सबको प्रेरित करता है, जो भी उसको जानता है उसको प्रेरित करता है। तो इसीलिए उसके जीवन को देखकर मैं अपना लक्ष्य बनाता हूं, मेरे गुरु ने ईश्वर की प्राप्ति की, उसने उसका मार्ग बताया है, मैं भी तो कर सकता हूं। और कितनी बड़ी बात है मनुष्य जन्म में, इस जन्म में इतना बड़ा काम मैं नहीं कर पाया, तो मुझको ये वाणी ही सिखाती है, ये शास्त्र ही सिखाते हैं, मौत तो तेरी है ही नहीं। क्योंकि अर्जुन पूछ रहा है कृष्ण से कि आप कह रहे योगी बन, मुझे पता है कि योग मार्ग में चलने में कितनी कठिनाई भी आएगी, बीच में बड़ा काम करोगे तो कठिनाई तो कुछ ना कुछ तो आएगी इसमें, और बीच में यदि मेरी मृत्यु हो गई तो सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं अर्जुन, जो कुछ भी तूने प्राप्त कर लिया मेहनत करके, उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो कसर रह गई, जो कमी रह गई, उसके लिए तुझको नए शरीर में साधन प्रदान करूंगा। अब कृष्ण ही ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी मौत तो है ही नहीं। यदि मैं अपने आप को शरीर करके देख रहा हूं तो मेरी मौत है, क्योंकि शरीर तो मर जाता है। लेकिन कृष्ण दूसरी बात कर रहे हैं कि शरीर मैं तुझको दोबारा प्रदान कर देता हूं, नया शरीर दे देता हूं। किसको दे देते हैं? वो कह रहे हैं अर्जुन, मैं तुझको नया शरीर दे दूंगा। इसका मतलब अर्जुन कौन है? यदि शरीर है तो मर गया है प्रभु, दूसरा शरीर किसको देंगे वो? इसलिए वो कह रहे हैं तू जीव है, तू बुद्धि है, तू वो है जिसमें चेतना है। चेतना कभी मर नहीं सकती, ये मेटीरियल है, ये बदल जाता है। शरीर पांच तत्व का मेटीरियल है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो कि बदल जाता है। तो जीव वही रहता है और शरीर बदल जाता है। तो अब बताइए, सतमार्ग पर यदि मैं चला, गुरु के कहने के मार्ग के अनुसार मैं चला, उसके ज्ञान को मैंने सीखने की कोशिश करी, तो कितना बड़ा भय से भय लेकर जीता हूं, मर जाऊंगा मैं, यहां मेरी मौत ही नहीं। मेरे बारे में सत्य यह है कि मेरी मौत है ही नहीं, मैं उसी प्रकार अमर हूं जिस प्रकार ईश्वर अमर है। क्योंकि किसी ने मुझको मेरी विद्या सिखाई ही नहीं, इसलिए मौत से डरता हूं और जिंदगी खत्म कर देता हूं, गलत रास्ते पर चलता हूं। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई अपनी सही उन्नति करना चाहता है तो पहले अपने आप को सतपरायण बना करके अपने आचरण को अधिक से अधिक शुद्ध करने का यत्न करे। पहले ये गोल बना है कि मैंने ईश्वर प्राप्ति करनी है, क्योंकि उसमें परम आनंद है, जीवन की सफलता है, मौत है ही नहीं। तो इतने बड़े चीज की, इतनी बड़ी चीज की प्राप्ति के लिए क्या मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी? तो कितनी सी मेहनत है वो, अपने आचरण को शुद्ध करना है। और आचरण को शुद्ध करने का मतलब क्या होता है? मेरे अंदर स्वाभाविक रूप में संसार की नकल करके जो पांच विकार मन में इकट्ठे हो गए हैं, उनके संस्कार इकट्ठे हो गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के रूप में, इनको मैंने धीरे धीरे कम करना है। उसका मेथड महाराज जी ने बता दिया, प्रेमी सादगी सत्य सेवा सत्संग सत्सिमरण, ये पांच नियम तू अपने जीवन में पालन कर। एकदम से नहीं करने हैं, धीरे धीरे, जैसे प्रगति करता है, एक कक्षा पास करता है, दूसरी कक्षा पास करता है, इसी प्रकार ये पांच नियम सारे जीवन भर तेरे इंप्रूव होते रहेंगे। इसका नतीजा क्या निकलेगा? तेरे मन के अंदर शांति के संस्कार बन जाएंगे, प्रेम के संस्कार बन जाएंगे, त्याग के संस्कार बन जाएंगे। जो सत्पुरुष के अंदर जो गुण है वो तेरे मन के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। तो इसलिए आगे क्या होगा, कह रहे हैं कि तब उसका उच्च जीवन उसकी अपनी कल्याण और दूसरों के कल्याण के वास्ते परम शिरोमणि हो सकता है। परम शिरोमणि अर्थात दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, इसको कहते हैं परम शिरोमणि। मैं ऐसा इंसान बन सकता हूं जो पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानव है। यह ठंडक का रास्ता है, किसी कंपटीशन का रास्ता नहीं है कि उसने ICBM तैयार करी कि यहां से लेकर अमेरिका छोड़ूंगा तो अमेरिका पे जाके गिरेगी। हम तो उजाड़ने की बात करते हैं, यहां वो चीज दे रहे हैं जो हमको जैसे ही कमाई की हमको अंदर ठंडक देनी शुरू कर देती है। जैसे मन में जैसे ही इच्छा उदय हुई बेचैनी शुरू हो जाती है, और इच्छा यदि एलिमिनेट हो गई तो चैन मिल जाता है। विचार से भी तो आप बहुत सी चीजें दूर कर देते हो, इच्छा उठ तो रही है लेकिन इसमें बड़ी परेशानियां हैं, या एनालिसिस किया और विचार से हटा दिया। तो आपके मन के अंदर जो इच्छाएं उठती हैं संसार की, ये धीरे धीरे कम होती रहती हैं, और एक दिन जब ईश्वर का अनुभव करते हो तो सारी इच्छाएं आपका पीछा छोड़ देती हैं। उस समय फिर ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का आनंद मेरे अंदर प्रकट हो जाता है। तो कहते हैं कि यह ही सत्पुरुषों का मार्ग है, ये मार्ग है सत्पुरुषों का, जिसके लिए सत्पुरुष धरती पर आए, हमारा उनसे संबंध बना, उनकी संगत से संबंध बना, उनके जो है शास्त्रों से संबंध बना। तो हमारा लाभ यह है कि उनकी इस तालीम को हम अपने अमल में लाएं, और जो उन्होंने निर्णय दिया है कि क्या निर्णय दिया है कि अपने त्याग से और अपनी सतग्रही भावना से दूसरों के अंदर सत त्याग और सत भावनाएं पैदा होती हैं, जो कि असली शांति का स्वरूप है। हरेक मनुष्य अपनी सही मानसिक पवित्रता को प्राप्त करने का यत्न करे। क्योंकि परम सुख और सर्व विजय इसी में है और यह ही अमन और शांति का रास्ता है। तो कितना सरल सी बात है कि मनुष्य सत्पुरुषों के मार्गदर्शन अनुसार अपने जीवन के अंदर धीरे धीरे पांच विकारों को कम करने की कोशिश करे, जिसके लिए महाजी ने सूत्र रूप में पांच नियम दे दिए, सादगी सत्य सेवा सत्संग से सुनण, और उसकी सारी डिटेल दे दी आपको और सारी सामग्री दे दी। हम सत्संग के द्वारा, संगत के द्वारा और अपनी साधना के द्वारा उसको लक्ष्य बनाएं, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य बनाएं। जितना भी इस जन्म में यात्रा तय हो गई बढ़िया है, क्योंकि कुछ भी निरर्थक नहीं जाएगा। संसार की जितनी प्रगति है यही छूट जाएगी और संसार के विकार आपके संग चले जाएंगे। और ये वो कमाई है जो गुण की कमाई करते हो, देह के साथ ये गुण खत्म नहीं होंगे, ये मन में बुद्धि में सुरक्षित रहेंगे और अगले जन्म में उसके आगे से हमारी प्रक्रिया शुरू होगी, उससे आगे से हमारी यात्रा शुरू होगी और हम भी एक दिन महाजी की तरह ईश्वर दर्शन करके संसार से विदा होंगे। ओ ब्रह्म संध्या सर्वतः।